एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा किताबी सा लग सकता है, लेकिन असल में ना ये हमारी जिंदगी और समाज से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यूटोपियावाद,
हाँ,
मतलब एक बेहतर, एक आदर्श दुनिया की जो कल्पना होती है।
नमस्ते। और देखिए, आज इस विषय को समझने के लिए हमारे पास जो आधार है वह है लाइमन टावर सार्जेंट की किताब यूटोपियनिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उनसे जुड़े कुछ और विश्लेषणों का सार। सार्जेंट इस विषय के मतलब बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं।
हाँ,
तो सवाल यही उठता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी, काफी उलझी हुई सी दुनिया में क्या ऐसी बेहतर दुनिया के सपने देखना सिर्फ वक्त की बर्बादी है या फिर इन सपनों में कोई ताकत भी छुपी है।
एमन टावर सार्जेंट के बारे में जान लेते हैं। जैसा आपने कहा, वो यूटोपियाई अध्ययन यानी कि यूटोपियन स्टडीज के फील्ड में एक बहुत जाना माना नाम है।
जी,
मिजूरी सेंट लुइस विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर एमेरिटस है और मतलब दशकों से इसी विषय पर शोध कर रहे हैं।
हाँ, और उनकी बात में वजन इसीलिए भी है क्योंकि उन्होंने सिर्फ थ्योरी पर ही काम नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिश एंड अमेरिकन यूटोपियन लिटरेचर जैसी बहुत महत्वपूर्ण एक तरह की ग्रंथ सूची बनाई
अच्छा,
जिसमें सैकड़ों सालों के यूटोपियाई साहित्य का पूरा लेखा जोखा है। फिर उन्होंने यूरोपियन स्टडीज नाम का एक जर्नल शुरू किया और सोसाइटी फॉर यूटोपियन स्टडीज की नींव रखने वालों में भी वो शामिल थे। तो उनका जो नजरिया है वो इस विषय को सिर्फ किताबी दायरे से बाहर निकालता है।
सही कहा। वो मानते हैं कि यूटोपियावाद कोई ऐसी मतलब शौकिया चीज नहीं है, बल्कि मानव संस्कृति और सोच का एक बुनियादी और जरूरी हिस्सा है ना?
बिल्कुल।
वो इस आम धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि यूटोपियाई सोच या तो बचकानी होती है या फिर खतरनाक।
हाँ, जो अक्सर लोग सोच लेते हैं।
हाँ, वो इसे गंभीर और आप कह सकती हैं एक उपयोगी बौद्धिक गतिविधि मानते हैं।
तो सार्जेंट के हिसाब से ये यूटोपियावाद है क्या फिर? उनका काम इस शब्द को एक एक नई गहराई देता है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ ऐसी साहित्यिक कल्पनाएं नहीं हैं जो कभी सच नहीं हो सकती, या सिर्फ कुछ ऐसी राजनीतिक योजनाएं नहीं हैं जो हमेशा तानाशाही में बदल जाती हैं जैसा कि कई लोग सोचते हैं।
तो फिर क्या है उनकी मुख्य दलील, क्या है इस विषय पर, मतलब सार क्या है?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी दलील ये है कि यूटोपियावाद यानी एक बेहतर समाज का सपना देखना, ये मानव संस्कृति और सामाजिक सोच का एक मौलिक, हमेशा रहने वाला और जरूरी हिस्सा है। ये एक तरह का सामाजिक स्वप्न है।
सामाजिक स्वप्न। अच्छा,
हाँ, कि हम कैसा समाज चाहते हैं उसकी कल्पना।
हाँ,
और ये सपना हमें सिर्फ कहानियों में नहीं मिलता।
अच्छा, तो फिर ये कहाँ कहाँ दिखता है?
हाँ, वही सार्जेंट बताते हैं कि ये तीन मुख्य रूपों में सामने आता है। पहला तो है साहित्यिक यूटोपिया यानी किताबों और कहानियों में।
ठीक है।
दूसरा है यूटोपियाई सामाजिक सिद्धांत यानी जो फिलोसफियाना और राजनीतिक विचार होते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो है इरादतन समुदाय यानी ऐसे असल जिंदगी के समूह जो इन सिद्धांतों पर जीने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि विचार और अमल भी है।
ये दिलचस्प है कि ये असल दुनिया के प्रयासों तक जाता है। तो सार्जेंट के मुताबिक इस सब का मकसद क्या है? ये क्यों जरूरी है? अगर ये सपने हैं तो क्यों जरूरी हैं?
उनके अनुसार यूटोपियावाद का सबसे महत्वपूर्ण काम है सामाजिक आलोचना।
सोशल क्रिटिक।
अच्छा, ये हमें मौजूदा समाज की कमियों, उसके अन्याय, उसकी समस्याओं को दिखाता है। कैसे? ये कल्पना करके कि चीजें अलग बेहतर कैसे हो सकती हैं। तो ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और शायद कहाँ जा सकते हैं।
समझ गई। तो ये सिर्फ भविष्य की कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि वर्तमान पर एक तरह की टिप्पणी है। और सार्जेंट इस विचार को इतिहास के काफी लंबे दौर में देखते हैं।
बिल्कुल।
प्लेटो से लेकर थॉमस मोर, फिर समाजवादी विचारक और आज के नारीवादी और पर्यावरणवादी विचारों तक। और इसमें डिस्टोपिया यानी बुरे समाज की कल्पना, वो भी शामिल है।
बिल्कुल, ये पूरी एक परंपरा है। चलिए जरा और गहराई में चलते हैं इसके। शुरुआत करते हैं यूटोपिया शब्द से ही। अक्सर लोग इसे असंभव या भोलापन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे कोई कहे अरे ये तो यूटोपियन बात है, ऐसा थोड़ी होता है।
एग्जैक्टली। सार्जेंट इसी सोच को चुनौती देते हैं। वो हमें थॉमस मोर के 1516 में गढ़े इस शब्द की जड़ों तक ले जाते हैं। देखिए, ग्रीक भाषा में इसके दो मतलब निकलते हैं। यूटोपिया यानी अच्छी जगह,
अच्छी जगह।
और ऊटोपिया यानी कोई जगह नहीं, नो प्लेस।
अच्छा,
तो यूटोपिया एक ऐसी अच्छी जगह है जो असल में कहीं मौजूद नहीं है। ये जो तनाव है ना, अच्छी जगह और कोई जगह नहीं के बीच का, यही यूटोपिया के दिल में बसा है।
वाह, ये शब्द की कहानी कितनी मतलब विचार करने लायक है। तो वो तीन रूप कौन कौन से बताए थे आपने, एक बार फिर से?
हाँ, पहला साहित्यिक यूटोपिया, ये वो काल्पनिक कहानियां हैं जिनमें एक बेहतर समाज बसा होता है, जैसे थॉमस मोर की यूटोपिया खुद, या एडवर्ड बेलामी की लुकिंग बैकवर्ड, जिसमें वो भविष्य के बोस्टन शहर की कल्पना करते हैं।
अच्छा, दूसरा रूप था?
दूसरा रूप है यूटोपियाई सामाजिक सिद्धांत। ये कहानियां नहीं बल्कि व्यवस्थित विचार होते हैं, फलसफियाना या राजनीतिक योजनाएं जो बताती हैं कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए और क्यों।
जैसे
प्लेटो की रिपब्लिक या मार्क्स का वर्गहीन समाज का नजरिया, ये सब सिद्धांत हैं।
ठीक है।
और तीसरा
है इरादतन समुदाय, इंटेंशनल कम्युनिटीज। ये सबसे ज्यादा जमीनी चीज है, ये वो वास्तविक प्रयास है जहां लोग इकट्ठे होकर अपने यूटोपियाई सिद्धांतों के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, असल में कोशिश करते हैं।
हाँ, जैसे इतिहास में शेकर समुदाय थे, या इसराइल के किबुत्स, या आज के दौर के इको विलेजेस। ये लोग सिर्फ सोचते नहीं, करते भी हैं।
चलिए साहित्यिक रूप पर थोड़ी और बात करते हैं। थॉमस मोर ने तो शुरुआत की,
फिर?
हाँ, फिर फ्रांसिस बेकन की न्यू अटलांटिस आई, उसमें विज्ञान और तरक्की पर बहुत जोर था। एडवर्ड बेलामी की लुकिंग बैकवर्ड ने 19वीं सदी के अमेरिका में एक समाजवादी भविष्य की कल्पना पेश की। तो विलियम मॉरिस ने न्यूज फ्रॉम नोवेयर में उसका एक अलग कलात्मक प्रकृति केंद्रित विकल्प रखा। ये सभी कहीं ना कहीं अपने समय की समस्याओं का जवाब ढूंढ रहे थे।
हाँ, और 20वीं सदी में नारीवादी यूटोपिया ने एक नई दिशा दी है ना, शार्लेट पर्किंस गिलमैन की हर लैंड,
बिल्कुल,
जहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं, या उर्सुला के लेगिन की द डिस्पोजेस्ट, जिसमें वो अराजकतावादी और पूंजीवादी समाजों की तुलना करती हैं। इन सब ने लैंगिक भेदभाव और सत्ता की जो संरचनाएं हैं उन पर गहरे सवाल उठाए। तो साहित्य यहाँ बदलाव का एक औजार बन गया।
हाँ बिल्कुल। अब आते हैं सैद्धांतिक पक्ष पर। प्लेटो की रिपब्लिक को तो यूटोपियाई सोच का एक, कह सकते हैं, शुरुआती बिंदु माना जाता है। फिर 18वीं-19वीं सदी में सेंट साइमन, फूरियर, रॉबर्ट ओवेन जैसे विचारक आए जिन्हें यूटोपियन समाजवादी कहा गया। इन्होंने समाज को नए सिरे से गढ़ने की बड़ी विस्तृत योजनाएं दी ताकि गरीबी और असमानता मिट सके।
फिर मार्क्स और एंगल्स आए। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद को इन यूटोपियन समाजवादियों से अलग मानते थे। वो कहते थे कि उनका समाजवाद तो वैज्ञानिक है।
हाँ, ये वो कहते थे।
लेकिन सार्जेंट का तर्क है कि उनका भी जो अंतिम लक्ष्य था, एक वर्गहीन, राज्यविहीन साम्यवादी समाज, वो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली यूटोपियाई सिद्धांत है। भले ही वो उसे ये नाम न दें, उसका असर वैसा ही रहा।
ये वर्गीकरण वाकई दिलचस्प है। अब बात करते हैं तीसरे रूप की, इरादतन समुदाय, यानी असल दुनिया के प्रयोग। आपने शेकर्स का जिक्र किया था।
हाँ।
जो अपने धार्मिक और सामुदायिक जीवन के लिए जाने जाते थे। रॉबर्ट ओवेन ने न्यू हार्मनी जैसे समुदाय बनाए जहां शिक्षा और सहयोग पर बहुत जोर था। फूरियर के विचारों पर आधारित फैलिंग्स बनाने की कोशिशें भी हुई।
और भी उदाहरण है, मुझे याद आ रहा है, जैसे इजरायली किबुत्स थे।
हाँ, किबुत्स
वो समाजवाद और जायोनी राष्ट्रवाद का मिलाजुला रूप थे। फिर 1960 के दशक में कई हिप्पी कम्यून बने, और आज भी दुनिया भर में इको विलेज है जो पर्यावरण के अनुकूल जीने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये सब असल दुनिया में यूटोपिया को संभव बनाने के प्रयास हैं।
लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इनमें से ज्यादातर समुदाय या तो बहुत छोटे रहे या फिर लंबे समय तक टिक नहीं पाए। तो फिर इनका क्या महत्व है, मतलब अगर ये फेल हो गए तो?
यहीं पर बात गहरी होती है। सार्जेंट कहते हैं कि इनका महत्व सिर्फ इनकी कामयाबी या नाकामयाबी में नहीं है, इनका महत्व इनके होने में है। ये सामाजिक प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट्स।
अच्छा,
ये हमें सिखाते हैं कि मिलकर रहना, नए नियम बनाना, आदर्शों को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल है, और इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं। उनकी नाकामयाबी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है ना?
हाँ, ये बात तो है। ठीक है, अब यूटोपिया के उस पहलू पर आते हैं जो शायद आजकल ज्यादा जाना पहचाना है, डिस्टोपिया। ये क्या है और यूटोपिया से इसका क्या रिश्ता है?
सार्जेंट एक बहुत रोचक बात कहते हैं इस पर। वो मानते हैं कि डिस्टोपिया यानी एक बुरे दमनकारी समाज की कल्पना, ये यूटोपिया का उल्टा नहीं है।
अच्छा, उल्टा नहीं है?
नहीं, बल्कि उसी परंपरा का हिस्सा है। डिस्टोपिया एक ऐसे समाज को दिखाता है जो शायद ऊपर से ठीक ठाक या मुनज्जम लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोगों की आज़ादी, उनकी इंसानियत को कुचल रहा होता है।
जैसे जॉर्ज ऑरवेल की 1984 या एल्डस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड, या फिर येवगेनी ज़ेमियातिन की वी, ये क्लासिक उदाहरण है, सही?
बिल्कुल। वी ने दिखाया कि कैसे हद से ज्यादा तार्किकता और निगरानी खतरनाक हो सकती है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने चेतावनी दी कि कैसे आराम और स्थिरता के नाम पर गहरी भावनाएं, कला और आज़ादी कुर्बान की जा सकती हैं। और 1984 तो खैर तानाशाही, डर और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का एक भयानक चित्र है। ये सब चेतावनियां हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टोपिया भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, बस वो नकारात्मक रास्ते से ये काम करते हैं।
बिल्कुल, वो हमें दिखाते हैं कि किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, कौन से मूल्य हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए सार्जेंट उन्हें यूटोपियाई परंपरा का ही एक अहम आधुनिक रूप मानते हैं। दोनों ही यूटोपिया और डिस्टोपिया सामाजिक आलोचना का काम करते हैं।
तो इन सबके पीछे वो कौन सी मानवीय इच्छा काम कर रही है? सार्जेंट यूटोपियाई आवेग या यूटोपियन इम्पल्स की बात करते हैं, ये क्या चीज है?
ये एक बहुत बुनियादी मानवीय इच्छा है, एक बेहतर जिंदगी जीने की, एक ज्यादा अच्छी दुनिया में रहने की। सार्जेंट मानते हैं कि ये इच्छा शायद इंसान के स्वभाव में ही है और ये पूरे इतिहास में अलग अलग शक्लों में मौजूद रही है। ये वो चिंगारी है जो हमें बेहतर की तलाश में लगाती है एक तरह से।
और फिर आता है यूटोपियाई कार्य या यूटोपियन फंक्शन। अर्नस्ट ब्लॉच जैसे दार्शनिकों ने भी इस पर काफी बात की है, इसका क्या मतलब है?
अगर आवेग इच्छा है तो कार्य वो है जो यूटोपिया समाज में करता है। इसके कई काम हैं, लेकिन सार्जेंट के अनुसार सबसे अहम है आलोचना और सामाजिक बदलाव को प्रेरित करना। मैं बताता है कि जो है वही हमेशा नहीं रहेगा, यथास्थिति को चुनौती देता है।
और दूसरे काम क्या है इसके?
दूसरा काम है आशा और क्षतिपूर्ति। मुश्किल वक्त में बेहतर भविष्य की कल्पना एक मनोवैज्ञानिक संबल दे सकती है, एक उम्मीद जगा सकती है। और तीसरा है संभावनाओं की खोज। यूटोपिया एक तरह के विचार प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट्स की तरह होते हैं।
अच्छा, सोचने के प्रयोग?
हाँ, जहाँ हम अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं, तकनीकों या मूल्यों के नतीजों के बारे में सोच सकते हैं बिना असल में उन्हें लागू किए।
तो कुल मिलाकर यूटोपियावाद सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये सोचने का, आलोचना करने का और शायद बदलने का भी एक तरीका है।
बिल्कुल, ये कई परतों वाली चीज है। साहित्य भी है, सिद्धांत भी है और असल जिंदगी के प्रयास भी। और इसकी असली ताकत शायद भविष्य का कोई सटीक नक्शा बनाने में नहीं, बल्कि वर्तमान पर तीखे सवाल खड़े करने में है। लक्ष्य शायद परफेक्शन नहीं, बल्कि बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ाना है।
और ये मैं सोचने पर मजबूर करता है कि हम गरीबी, असमानता, हिंसा जैसी समस्याओं से आज भी क्यों जूझ रहे हैं। जैसे भारत में ही देखें, जब कोई मोहल्ला या गांव मिलकर पानी बचाने या साफ सफाई का कोई नया तरीका ईजाद करता है, छोटा सा ही सही।
हाँ बिल्कुल,
तो वो भी तो एक छोटे पैमाने पर यूटोपियाई सोच का ही नतीजा है, मौजूदा हालात को बेहतर बनाने की कोशिश।
सही कहा, ये सवाल पूछने की हिम्मत ही शायद बदलाव की पहली सीढ़ी है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि यूटोपिया और डाइस्टोपिया दोनों हमें कुछ सिखाते हैं। हमारे डर भी उतने ही अहम है जितने हमारे सपने।
और ये यूटोपियाई आवेग, बेहतर की ये चाहत, ये हमेशा मौजूद रहती है। ये सामाजिक आंदोलनों को, नई सोच को, कला को ऊर्जा देती है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आज हम अव्यवहारिक या यूटोपियन कहकर शायद हंसते हैं, वो कल की हकीकत बन सकता है। कभी महिलाओं का वोट डालना या दास प्रथा का खत्म होना भी तो किसी जमाने में यूटोपियन सपना ही लगता था।
वाकई, ये दिखाता है कि सामाजिक सपने देखना लंबे समय में कितना व्यवहारिक हो सकता है। सार्जेंट के काम से कुछ बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे ये विचार कि यूटोपिया का असली काम भविष्य बताना नहीं बल्कि वर्तमान की आलोचना करना है। ये इसे सिर्फ कल्पना से उठाकर एक जरूरी औजार बना देता है।
और ये कि डायस्टोपिया यूटोपिया के दुश्मन नहीं बल्कि उसी परिवार का हिस्सा हैं। दोनों हमें अच्छे समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, भले ही उनके रास्ते अलग हों। ये नजरिया मुझे बहुत गहरा लगा।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई व्यवहारिक पहलू?
हाँ बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये हमें आलोचनात्मक ढंग से सोचना सिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग। हम अपने आसपास की चीजों पर यूटोपियन सवाल पूछ सकते हैं। हमारा शहर ज्यादा इंसानी कैसे बन सकते हैं? स्कूल ऐसे क्यों नहीं हो सकते जहां हर बच्चे को सीखने में मजा आए? ये हमें जैसा चल रहा है चलने दो वाली सोच से बाहर निकालता है।
हाँ, ये यथास्थिति पर सवाल उठाना सिखाता है। दूसरा, ये सामाजिक सक्रियता को एक नई नज़र दे सकता है। हर सामाजिक आंदोलन, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो या बराबरी के लिए, कहीं ना कहीं एक बेहतर दुनिया के सपने से जुड़ा होता है।
बिल्कुल,
ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ विरोध करना काफी नहीं, एक सकारात्मक विकल्प की कल्पना करना भी उतना ही जरूरी है।
तीसरा, ये हमारी मीडिया को समझने की क्षमता बढ़ा सकता है। आजकल फिल्में, वेब सीरीज,
हाँ बहुत आती हैं,
और जैसे ब्लैक मिरर हो या कोई साइंस फिक्शन फिल्म, अक्सर यूटोपियन या डायस्टोपियन थीम पर बनी होती हैं। उन्हें सिर्फ मनोरंजन की तरह ना देखकर ये सोचना कि वो हमारे आज के समाज, हमारी उम्मीदों और डरों के बारे में क्या कह रही हैं, ये एक तरह की मीडिया साक्षरता है।
चौथा, ये अलग अलग क्षेत्रों में नई सोच को बढ़ावा दे सकता है, चाहे वो शहर बनाने वाले आर्किटेक्ट हों, नई तकनीक बनाने वाले इंजीनियर हों, या शिक्षा नीति बनाने वाले लोग। बेहतर भविष्य की कल्पना करना उन्हें लीक से हटकर सोचने और सचमुच कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
और आखिर में, शायद सबसे जरूरी, ये निजी स्तर पर भी सोचने में मदद कर सकता है। अपने लिए एक आदर्श जीवन, आदर्श रिश्ते या समुदाय की कल्पना करना, भले ही वो पूरी तरह कभी हासिल ना हो, हमें एक दिशा दे सकता है, हमारे मूल्यों को साफ कर सकता है।
तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि बेहतर दुनिया के सपने देखना बचकाना नहीं है, बल्कि ये हकीकत को बदलने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात शायद यही लगी कि कल के असंभव समझे जाने वाले सपने आज की सच्चाई बन सकते हैं।
मेरे लिए सबसे अहम बात ये रही कि यूटोपिया का मूल काम सामाजिक आलोचना है, और डायस्टोपिया भी इसी परंपरा का हिस्सा है। ये उम्मीद और चेतावनी के बीच का जो संतुलन है वो दिखाता है, और ये कि ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बेहतर की तलाश, ये कभी खत्म नहीं होती।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और न जाने कितनी जटिल चुनौतियों से जूझ रही है, क्या बेहतर विकल्पों की कल्पना करने की हमारी क्षमता, हमारा ये यूटोपियाई आवेग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।